HD Smartcast.
You are listening to an HD Smartcast original.
क्रिप्टो करेंट के लिसनर्स से एक मुझे काफ़ी अपने बारे में शिकायत मिलती है कि यार आप इथेरियम पे इतनी बात नहीं करते, आप इथेरियम 2.0 के बारे में बात नहीं करते, क्या आप बिटकॉइन मैक्सी हैं या बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट हैं? तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी का मैक्सी या मैक्सिमलिस्ट नहीं हूँ, और इथेरियम के ऊपर इतनी अभी तक मैंने बात नहीं करी, ये चीज़ 100% करेक्ट है। बट इस एपिसोड में इसी वजह से हम खाली बात करेंगे इथेरियम 2.0, यानी इथेरियम का मर्जर जो मच अवेटेड है, और काफ़ी लंबे टाइम से विटालिक ब्यूटरिन बात कर रहे हैं कि अब होगा अब होगा अब होगा, और इथेरियम फैंस की तो आंखें तरस चुकी। क्रिप्टो करेंट के इस एपिसोड में समझते हैं कि इथेरियम काम कैसे करता है और इसको 2.0 के लिए नीड ही क्या पड़ी। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इथेरियम के साथ तीन करेंट प्रॉब्लम्स हैं, जिसे हम ट्राइफेक्टो ऑफ क्रिप्टो भी बोलते हैं। सबसे पहले, इट इज नॉट स्केलेबल, यानी ये खाली एग्जीक्यूट कर सकता है 15 ट्रांजेक्शंस पर सेकेंड, विच मीन्स कि ट्रांजेक्शंस को प्रोसेस करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही हाई गैस फीस होती है। नंबर टू, ये सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि करेंटली ये प्रूफ ऑफ वर्क पर है और ये बहुत ज़्यादा ह्यूज कंप्यूटिंग पावर यूज़ करता है और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है। इन माई ओपिनियन दिस इज़ नॉट एन इशू विद इथेरियम, बट काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि एक इशू है। नंबर थ्री, सिक्योरिटी, यानी इस पर 51% अटैक कभी भी हो सकता है। तो अब इथेरियम के मर्ज के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ से आई? सबसे ज़्यादा डिमांड आई कम्युनिटी से, जो ये चाहती थी कि इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड्स को इंक्रीज करा जाए, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हो सकें पर सेकंड, और जो गैस फीस $100, $200, $300, $500 तक भी जाती है वो मिनिमाइज हो सके, लाइक अदर ब्लॉकचेन्स जैसे कि बाइनेंस, फैंटम या एवैक्स। तो इथेरियम मर्ज जो अभी ऑलमोस्ट 2/3 कम्प्लीट हो चुका, इसके अंदर द कॉन्सेप्ट इज कि हम इथेरियम को ट्रांजिशन कर देंगे एक नए और अपडेटेड ब्लॉकचेन के ऊपर, और ये होगा एक सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड अपग्रेड्स फॉर द एग्जिस्टिंग इथेरियम नेटवर्क। तो सुनने में तो बहुत ही फैंसी लगता है, जैसे आप अपने फोन में अगर एंड्रॉयड या iOS को रेगुलरली अपडेट करते हैं, वैसे ही तो इथेरियम अपडेट होगा। जी हाँ, अपडेट तो वैसे ही होगा विद वन स्मॉल एक्सेप्शन, इथेरियम ऑलरेडी लाइव है, और इसके लिए एक चीज मैटर करती है कि हर एक दिन जहां इथेरियम पे कुछ काम करा गया, हमें लाइव करते टाइम उसको भी अकाउंट में लेना होगा। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपकी गाड़ी खराब हो चुकी, पर अभी भी ये गाड़ी चल रही है और आपकी गाड़ी बंद नहीं हो सकती। अब आपकी गाड़ी में एक मैकेनिक आता है, वो बैठता है और वो चलती गाड़ी को ही ठीक करना चाहता है। ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल और डिफिकल्ट लगता है सुनने में, राइट? बट ये सिचुएशन है इथेरियम के साथ, क्योंकि इथेरियम ऑलरेडी रनिंग है, बहुत सारी ट्रांजेक्शंस होती हैं, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज इसके ऊपर बिल्ट इन हैं। इसका करंट प्रोग्रेस हॉल्ट करके कुछ नया क्रिएट करना इज नॉट पॉसिबल, जिस वजह से ये ट्रांजेक्शन, ये मर्जर काफी डिफिकल्ट है। हालांकि इसका इंटेंशन अच्छा है कि ज्यादा सिक्योरिटी, ज्यादा स्केलेबिलिटी और ज्यादा सस्टेनेबिलिटी होगी, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। अब बात करते हैं कि इथेरियम 2.0 के गोल्स क्या हैं। सबसे पहले तो नेटवर्क का सपोर्ट बढ़ाना है। इथेरियम 2.0 सपोर्ट करेगा अप टू 1000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड, यानी स्केलेबिलिटी को ये इंश्योर करेगा। नंबर टू, 51% अटैक के अगेंस्ट सिक्योरिटी ज़्यादा मिलेगी। एंड नंबर थ्री, ये प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर जाएगा, जो अभी तक ज़्यादा एनवायरमेंट एंड एनर्जी एफिशिएंट माना जाता है, और ये इंटेंसिव माइनस को हटाता है, यानी ये सस्टेनेबिलिटी बढ़ाता है। अब यहाँ पर मेरा एक अपना ओपिनियन है, जो ये कहता है कि प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक का मर्जर बहुत ही रिस्की होगा, क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक एक नया कंसेंसस मैकेनिज्म है इन कंपैरिजन टू प्रूफ ऑफ वर्क, जिसके ऊपर बिटकॉइन बना हुआ है और वो बहुत ही रोबस्ट है। प्रूफ ऑफ वर्क को हैक करने के लिए बहुत सारे हैकर्स काफ़ी सालों से लगे हुए हैं और वो फेल भी हो रहे हैं, तो हमारे पास प्रूफ ऑफ वर्क पे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और प्रूफ ऑफ वर्क अभी तक ज़्यादा सॉलिड नेटवर्क रहा है इन कंपैरिजन टू प्रूफ ऑफ स्टेक, विच इज़ अ रिलेटिवली न्यूअर कंसेंसस मैकेनिज्म। अभी प्रूफ ऑफ स्टेक में डेफिनेटली बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, बट क्योंकि ये लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, तो ये इथेरियम जैसे बड़े क्रिप्टो करेंसी, इनफैक्ट वर्ल्ड के सबसे सेकेंड बिगेस्ट बड़े क्रिप्टो करेंसी पे काफ़ी एडिशनल रिस्क डालता है, क्योंकि अगर इथेरियम का प्रूफ ऑफ स्टेक मर्जर सक्सेसफुल नहीं होता, या प्रूफ ऑफ स्टेक इथेरियम के लिए सक्सेसफुल नहीं होता, तो बाकी सारे क्रिप्टो करेंसीज पे बहुत इम्पैक्ट आएगा, और ओवरऑल क्रिप्टो वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि इथेरियम इज़ द सेकंड मोस्ट ट्रस्टेड नेम फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो इसको आप ऐसे सोचिए कि वर्ल्ड की अगर सेकंड बिगेस्ट कंपनी कोई नए मर्जर के साथ अपनी परफॉर्मेंस, अपने प्रोडक्ट्स या अपनी डेवलपमेंट का ट्रैक्शन लूज कर देती है, तो लोगों का उस कंपनी से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा और वो बाकी कंपनीज पे भी शायद उतना ट्रस्ट ना करें, क्योंकि हर इंसान के मन में आएगा अगर यार वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी के साथ ऐसा हुआ तो छोटी कंपनीज के सक्सेसफुल मर्जर्स या सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन के कितने ही चांसेस हैं। सेम चीज इथेरियम के अंदर है। नाउ कमिंग बैक टू ETH 2.0, क्योंकि इस एपिसोड में हमें ETH 2.0 के ऊपर बात करनी है, ना कि मेरे पर्सनल ओपिनियन के बारे में। तो हम बात करते हैं अब शार्डिंग की। शार्डिंग इज द कोर आइडिया फॉर ETH 2.0 और ये बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच इज कॉल्ड DBMS। शार्डिंग ये बोलता है कि एक बड़े डेटाबेस को छोटे डेटाबेस या स्मॉलर इंस्टेंसेज में, यानी शार्ड्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? तो अगर मान लीजिए इथेरियम 2.0 में 64 न्यू चेन्स होंगी, यानी 64 शार्ड्स होंगे, यानी हर चेन का एक शार्ड होगा, ये डायरेक्टली स्केलेबिलिटी कंसर्न्स को एड्रेस करेगा। थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। हर इथेरियम नोड के पास एक शार्ड होगा, इसका मतलब उसको लेस कंप्यूटिंग पावर लगानी पड़ेगी, यानी लेस हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, यानी मोर एनर्जी एफिशिएंट होगा। और क्योंकि हमने 64 नोड्स लगा दिए या 64 शार्ड्स लगा दिए या 64 न्यू चेन्स लगा दिए, अब हर चेन के पास अगर थोड़ा थोड़ा डेटा भी सेव्ड है तो भी वो डिसेंट्रलाइजेशन मेंटेन कर सकती है और सारे सबसेट ऑफ डेटा के साथ सारा डेटा अपने पास स्टोर कर सकती है। यहाँ से स्टोरिंग भी ज़्यादा इफिशियंट हो चुकी। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं, हम चलते हैं 40-50 साल पहले दिल्ली में, जब इलेक्ट्रिसिटी आनी ही स्टार्ट हुई थी और पूरे दिल्ली में एक से दो ही प्लांट्स होते थे जो पूरे ग्रिड्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते थे। और अगर ये प्लांट्स में कोई मैलफंक्शन हो गया या इलेक्ट्रिसिटी चले गई तो पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी एक साथ चले जाती थी। धीरे 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 करते करते ये चीज़ें बेटर हुई। जब मैं छोटा था तो मेरे को याद है कि अगर लाइट जाती थी तो ऑलमोस्ट मेरे पूरे एरिया की लाइट एक साथ जाती थी। लोग घरों से नीचे उतर आते थे और बात कर रहे होते थे कि यार यहाँ 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 के एरियाज में भी पक्का लाइट गई होगी। वर्सेस अगर हम आज देखते हैं, आज अगर लाइट जाती है तो एक साथ एक सोसाइटी के सारे घरों की भी लाइट नहीं जाती, वहां पे कुछ ही घरों की लाइट जाती है। हुआ ये कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे छोटे 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 ग्रिड सिस्टम्स डेवलप करे गए और वहां से इलेक्ट्रिसिटी को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। यानी अगर आज मयूर विहार में लाइट जाएगी तो पश्चिम विहार में लाइट रहेगी। मयूर विहार में लाइट जाने से पश्चिम विहार में इलेक्ट्रिसिटी आएगी या नहीं का कोई रिलेशन ही नहीं रहा। सिमिलरली अगर CP के अंदर लाइट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि साउथ दिल्ली में लाइट नहीं जा सकती। ये पूरा का पूरा ग्रिड स्ट्रक्चर इंश्योर करता है कि हमारा फेलियर रेट फॉर पावर या इलेक्ट्रिसिटी मिनिमाइज रहे। यही सेम चीज आप शार्डिंग के अंदर सोच सकते हैं कि अगर 64 न्यू चेन्स या 64 न्यू शार्ड्स होंगे तो वहां पे उनको रखने का मेन गोल ही यही है कि हमारा रेट ऑफ फेलियर या चांस ऑफ फेलियर मिनिमाइज रहे। हाँ, इनिशियली ये सारे के सारे चेन्स या शार्ड्स इतने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्रांजेक्शन्स को हैंडल नहीं कर सकते। इनिशियली ये खाली डेटा ही प्रोवाइड करेंगे और कलेक्ट करेंगे, बट विथ टाइम ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को भी हैंडल कर सकेंगे और इसके लिए हमें लेयर टू सॉल्यूशंस की नीड होगी, जिन्हें बोलते हैं रोलअप्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ शार्डिंग एंड रोलअप्स से हम इथेरियम को देखते हैं कि शायद ये लगभग 100,000 ट्रांजेक्शंस पर सेकंड तक स्केल हो सके। रोलअप्स का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने फोटोग्राफी सीखी और आपने अच्छे पिक्चर्स क्लिक करने स्टार्ट करे। अब आपने अच्छे पिक्चर्स तो क्लिक करे बट अभी भी आपको कुछ चीज मिसिंग लगती है, तो आप इसमें हल्की फुल्की एडिटिंग करते हैं। आप थोड़ा बहुत ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, शेडो इफेक्ट कम कर सकते हैं, कंपोजर बढ़ा सकते हैं और बहुत सारे वेरिएशंस एडिटिंग के यूज कर सकते हैं। ये करने से आपकी जो अच्छी पिक्चर है इसकी क्वालिटी और इसका जो ओवरऑल एसेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, काफ़ी मैक्सिमाइज हो जाता है, या जैसे हम बोलते हैं कि उस फोटो में चार चांद लग गए। सिमिलरली रोलअप्स बंडल अप करते हैं ट्रांजेक्शन्स को और प्रोवाइड करते हैं क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ या की और ये सबमिट करते हैं उन शार्ड्स को। यानी रोलअप और शार्ड एक साथ काम कर रहे हैं एज अ टैग टीम। और अगर शार्ड्स और रोलअप पॉपुलर बनते हैं देन ये डिसाइड करते हैं कि आगे जाके इथेरियम पे कितनी ट्रांजैक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट हो सकती हैं विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। करंट इथेरियम चेन विल बिकम वन ऑफ द शार्ड्स एंड ओनली दिस ओल्ड चेन विल बी अ शार्ड टू हैंडल द ट्रांजैक्शंस एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये अभी का प्लान है। अब इसके साथ बात करते हैं बीकन चेन के बारे में, जो एग्जिस्ट करती है इन पैरेलल विद इथेरियम ब्लॉकचेन, जिसका पर्पस है प्रूफ ऑफ सिस्टम को टेस्ट करना और इंश्योर करना कि इवेंचुअली इथेरियम मेन नेट एक बार मर्ज के बाद अडॉप्ट करा जाएगा बाय जनरल पब्लिक। और ये बीकन चेन रिस्पॉन्सिबल है स्टेकर्स को रैंडमली चूज करने के लिए, रादर देन डिसाइडिंग कि किसके पास 51% ऑफ स्टेक रहेगा। ताकि इथेरियम की सिक्योरिटी भी इंश्योर्ड रहे। रैंडमनेस इज इम्पोर्टेंट एंड इसी वजह से हमारे पास बीकन चेन है और यही हमारा सबसे पहला इथेरियम 2.0 का रोड मैप भी था। इनिशियल वैलिडेटर्स को नए ब्लॉक्स मिलते हैं ऑन द बीकन चेन बट नॉट ऑन द करेंट इथेरियम मेननेट। एंड वंस इथेरियम मेननेट बिकम्स पार्ट ऑफ इथेरियम 2.0 ओनली द शार्ड्स विल बी एबल टू ऐड न्यू नोड्स टू देम। अब ये काफी टेक्निकल लग रहा होगा तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ETH 2.0 के एपिसोड को 2-3 बार सुनिए और इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करने का कोशिश करता हूँ। इथेरियम 2.0 का फेज 1 था बीकन चेन जो लॉन्च हुआ, जहां 16,384 वैलिडेटर्स यानी 16,384 वैलिडेटर्स तक हम रीच करे। फेज 1 में हम तब पहुंचे जब फेज 0 एस्टेब्लिश हो चुका था और डेटा शार्डिंग यहां पर हमारा गोल था। फेज 1.5 तब है जब फेज 1 एस्टेब्लिश हो चुका और इथेरियम मेननेट अब ऐड हो जाएगी शार्ड्स के साथ, जिसमें सारा डेटा एंड हिस्ट्री रहेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का और इसको मेंटेन करने के लिए हम डॉकिंग को यूज करेंगे। वंस फेज 1 एंड 1.5 इज रीच्ड, यहां पे दो पॉसिबल सिनेरियोस हैं कि या तो डेटा शार्डिंग प्लस रोलअप्स ही बहुत होंगे और हमें आगे फेजेस की नीड ही नहीं पड़ेगी, या अगर नीड पड़ेगी तो आगे जाके हम नए शार्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। इसका मैं आपको एक और सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप एक टाउन प्लान कर रहे हैं और आपने सोचा कि इस टाउन की पॉपुलेशन 40,000 है और आपने सोचा कि करेंटली 40,000 लोगों के लिए हम 10,000 घर बना सकते हैं अपने टाउन में वाइल मेकिंग श्योर कि सफिशिएंट नंबर ऑफ एमिनिटीज, यूटिलिटीज और पब्लिक प्लेसेस भी रहेंगी। आपने सोचा कि ये सारा करने के साथ साथ हम एक सफिशिएंट बैंडविड्थ और मार्जिन रख के चलते हैं कि हो सकता है इस टाउन की पॉपुलेशन बढ़े तो हमें फ्यूचर में 10,000 और घर कंस्ट्रक्ट करने पड़े। सिमिलरली इथेरियम के साथ भी सेम चीज है, क्योंकि इथेरियम 2.0 अभी पूरा आया भी नहीं और ये टेस्ट भी नहीं करा जा सकता कि कितने ट्रांजैक्शंस वो रियल टाइम में हैंडल कर पाएगा, तो बहुत सारे डेवलपर्स इस पॉसिबिलिटी को भी लेकर ओपन हैं कि शायद फ्यूचर में इथेरियम 2.0 के बाद इथेरियम 2.5 या इथेरियम 3.0 भी आए, बट वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा उस सिचुएशन के ऊपर जहां इथेरियम अगर स्केल नहीं कर पाता या कुछ नए चैलेंजेस में रन थ्रू कर लेता है। सो दिस इज हाउ इथेरियम 2.0 लुक्स लाइक राइट नाउ। अभी के हिसाब से विटालिक ब्यूटरिन की अगर हम माने, इथेरियम 2.0 लगभग सितंबर में लाइव हो जाएगा। द बेस्ट पार्ट इज कि इथेरियम 2.0 का 2/3 काम लगभग हो चुका, इसके 2 चेन्स पे टेस्टिंग हो चुकी एंड अब खाली 3rd इसकी टेस्टिंग बची है। सो मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ फॉर इथेरियम 2.0, क्योंकि इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ओपिनियन आई हैव वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट द वे इथेरियम वर्क्स इन कंपैरिजन टू द कोर डेवलपमेंट टीम। तो मैं टीम पे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि इथेरियम 2.0 कैसा काम करता है और क्या वो सारे गोल्स जो कि सस्टेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी के हैं उनको मीट कर पाता है या नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड सुन के आप ETH 2.0 के बारे में काफी चीजें समझे होंगे और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो उन्हें होल्ड करिए, पहले इस एपिसोड को दोबारा सुनिए और अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं देन यू कैन रीच आउट टू मी और मैं मिलूंगा आपसे क्रिप्टो करेंट के अगले एपिसोड में।
This was an HD Smartcast original. HD Smartcast.